الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے ہفتے آپ نے ایک جنرل ٹاپک کے اوپر بات سنی تھی کہ چار چیزیں پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتی ہیں, جیسے کہ ان میں سے ایک کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے پہ محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو استوار کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو انسان اپنے دن کے اعمال کو سنوارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال اس کے لیے سنوار دیتے ہیں. تو اس طرح کی بات جو تھی وہ بہت ایک جنرل ٹاپک تھا جو ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے, آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن آج ارادہ تھا کہ کچھ ٹیکنیکل باتوں کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے, تو وہ عموماً تو ان لوگوں کے لیے ہی انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی جو کہ سلوک کے طریقے کے اوپر قدم رکھ چکے ہیں اور ذکر اذکار کی محنت شروع کر چکے ہیں. لیکن عام دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو کہ فارملی اس محنت پہ ابھی نہیں انیشیٹ ہوئے, تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کچھ ان کو بھی بات سمجھ میں آئے گی اور اس راستے کے بارے میں ان کے دل میں بھی کچھ تمنا پیدا ہو کہ وہ بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی علاقے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, دو طرح کی بستیاں دیکھنے میں آتی ہیں آج کل کے بڑے بڑے شہروں کے اندر. عام طور پر جیسے ہمارے شہر کراچی کے اندر دو میجر قسم کے علاقے نظر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے بیچ میں کچھ اور ٹائپ کے علاقے ہوتے ہیں. لیکن دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, ان میں سے ایک وہ ہوتی ہے جس کو کہ انگریزی زبان میں سلمز کہتے ہیں یا ہماری زبان میں کچی بستیاں کہتے ہیں, جھوپڑیوں کا علاقہ جہاں پہ کہ بہت ہی زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. تو وہ لوگ عموماً جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آ کر کے شہر میں بس گئے ہوتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کام ملنے کی زیادہ امید ہوتی ہے اور بڑے شہر میں آ کر کے ان کو کچھ فائدے نظر آتے ہیں. لیکن وہ آ کر کے بس تو جاتے ہیں کسی کھلی جگہ کے اوپر, اپنی جھوپڑیاں ڈال لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی چونکہ پلاننگ نہیں ہوئی بھی ہوتی, وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ ان کو آباد کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی, تو ان جگہوں کے اوپر پھر کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی, تو وہاں پہ بس ایک ان کا زندگی گزر رہی ہوتی ہے کچی بستیوں کے اندر. وہاں نہ کوئی ہسپتال ہوتا ہے, نہ کوئی کلینکس ہوتی ہیں, نہ کوئی انڈیویجول ڈاکٹر ہی آ کر کے وہاں پہ سروے کیا کرتا ہے کہ بھائی میں لوگوں کو چیک کر کے پھر ان کو دوا وغیرہ دے دیا کروں. وہاں اس قسم کی کوئی ہیلتھ کیئر سروسز نہیں ہوتی. تو اگر آپ کا کبھی ان جگہوں پہ جانا ہو تو وہاں گندگی کا ایک بہت ہی ایکسٹریم پرابلم ہوتی ہے, مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ اس ماحول کے اندر ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ اسی گندگی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں, اسی گندگی کے اندر پل کر کے جوان ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بیمار پڑ گیا تو علاج کا کچھ پتا نہیں, بہت سے لوگوں کو تو بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہیں. اگر کچھ تکلیف ہوتی بھی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں, کہاں جائیں, یہاں تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ فیس لے گا, فیس کہاں سے بھریں گے, کوئی پبلک کیئر سسٹم تو ہے نہیں کہ فری کا علاج ہو جائے گا کسی بڑے اسپتال میں جا کر کے. تو وہاں پر جو ہے وہ پھر ایک ایسا نظام زندگی بن جاتا ہے کہ लोग बीमारियों ही में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको उसका एहसास तक खत्म हो जाता है कि हम बीमार हैं और हमें जो है वो कुछ इलाज की फिक्र करनी चाहिए। तो ये जो है एक एक एक्सट्रीम होती है बड़े शहरों के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। खैर से खैर ऐसी बात नहीं है कि गोया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। ये स्लम्स जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ही की कॉइंड एक टर्म है, जो कि हर अमेरिका के बड़े शहर के अंदर स्लम्स होते हैं। वहां भी इसी तरह का सिस्टम होता है, अगरचे के ठीक है वहां पे जरा डॉक्टर वगैरह का सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो आपको एक अजीब वहशत और खौफ का माहौल नजर आएगा। जली हुई इमारतें नजर आएंगी, तबाहशुदा जो है वो इलाके होंगे, जो दुकानें होंगी उन दुकानों ने अपने दुकानों की खिड़कियों तक के ऊपर मोटे मोटे जो है वो जालियां लगाई हुई होंगी, दरवाजे के ऊपर भी जो है वो मुकम्मल जाली होगी। अगर कोई चीज खरीदने के लिए कोई आएगा तो वो दरवाजा खोलेंगे नहीं, बल्कि बाहरी से जो है उससे पूछ करके उसको बाहरी बाहर निपटा देंगे, इसलिए कि वहां पे क्राइम का इतना ज्यादा बुरा सिस्टम होता है, इतना बुरा माहौल होता है। खैर ये स्लम्स तो वहां भी होते हैं, तो हमारे शहरों में ये जो कच्ची कच्ची बस्तियां होती हैं वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाएं तो कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहां पर के बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत बड़े लोग रहते हैं, बल्कि हमारे हजरत तो कहते हैं कि ये ना कहो कि वहां बड़े लोग रहते हैं बल्कि वहां बड़े बोझ वाले लोग रहते हैं। तो वहां बड़े बोझ वाले लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी उनके घर होते हैं, और उन इलाकों के अंदर जो बेहतरीन हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो बेहतरीन हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनकी क्लिनिक्स भी मौजूद होती हैं, और उमूमन जो है वहां के लोगों को हेल्थ केयर का पता होता है। तो उनमें जो है अपनी बीमारियों का कुछ शऊर भी होता है, जब कभी बीमार हो जाते हैं तो आसानी से किसी डॉक्टर तक चले जाते हैं, वहां से दवा ले आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। अब इस तरह के इलाके के अंदर रहने वाले लोग कभी-कभार ऐसा होता है कि ये जो उनको हेल्थ केयर की नेमत मुयस्सर होती है उस नेमत का एहसास नहीं कर पाते कि कितनी बड़ी हमारे पास अल्लाह ताला की नेमत है, जो कि हमारे ही शहर में रहने वाले कितने लाखों लोग हैं जिनको के मुयस्सर नहीं है, जो स्लम्स में लोग रहते हैं, जो कच्ची बस्तियों के लोग रहते हैं। तो कभी ऐसे लोगों को भी जो है वो हेल्थ केयर की तरफ से एक लापरवाही सी बरतनी शुरू हो जाती है, या फिर ये कि डॉक्टर के पास गए तो वहां से जो है अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर है, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे दवाई लेकर के आए तो अब उस दवाई को जो है वो जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए था उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर के साथ फॉलो अप जो है वो विजिट नहीं किया। तो इस तरह की फिर लापरवाही जो है वो ऐसे नेमतों में रहने वाले लोग भी जो है वो बरतना शुरू हो जाते हैं। तो जो फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर होता है या जो अच्छा डॉक्टर होता है जिसने के एक अच्छी दवा को प्रेस्क्राइब करना होता है, उसने बड़े सिस्टम से उस दवा को समझा होता है, सीखा होता है, तो वो जो है लोगों को दवाइयां देता है और फिर उसने देखा होता है कि इस दवा को इस्तेमाल करके कितने हजारों लोगों को शिफा हुई है, कितने लोग जो है वो सेहतियाब हुए हैं, बीमारियों से उनको निजात मिल गई है, तो उसको अपनी दवा के ऊपर तो एतमाद होता है कि इस दवा को तो जो भी इस्तेमाल करेगा उसको फायदा हो के रहेगा। लेकिन अब इस्तेमाल करने वाला अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल न करे और या तो राबता ना करे डॉक्टर से आकर के, या फिर ये कि अगर करे भी तो वो वही बार बार जो है वो बीमारी वाली बातें ही करें, बीमारी वाली ही बातें बार बार रिपीट करता रहे कि मुझे तो ये दर्द भी होता रहता है और मुझे तो वो दर्द भी होता रहता है, मुझे ये भी होता है, मुझे वो भी होता है, तो डॉक्टर तो उसको यही कहेगा ना कि भाई आपने तो इस्तेमाल किया नहीं, आप जो है उसको सही तरह से एक दफा इस्तेमाल कर लें, हजारों लोगों को इससे फायदा हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। लेकिन इंसान जब तक उसको इस्तेमाल करेगा नहीं तो उस वक्त तक उसको फायदा होता नहीं है। हमारे साथ उमूमन ये किसी एक या दो की बात नहीं है, आजकल उमूमन ये जो है हम इसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि हम जो हैं वो अल्लाह ताला के नेमतों के अंदर पले हुए हैं। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की इतनी अनगिनत नेमतें हैं कि हम उनका शुमार तो जाहिर है नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने खुद चैलेंज कर दिया हमें। लेकिन अपने जैसे से मुराद इंसानों के ऊपर अगर आप दुनिया के अंदर निगाह डालें तो हमारी जैसी नेमतों में जीने वाले इंसान जो हैं वो कम होते हैं। यानी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि जी हाथ पैर अल्लाह ताला ने दिए और अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत दी और सुनने की सलाहियत दी, तो ये तो उमूमन सारे इंसानों में होती है, लंगड़े लूले तो हैं आपको मुआशरे के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन हम उन नेमतों की बात कर रहे हैं जो कि आपके अमन अमान वाली नेमत है, मिसाल के तौर पर कि मुआशरे के अंदर एक अमन और अमान वाली कैफियत है, आप जो चीज करना चाहते हैं कहीं जाना चाहते हैं तो आप घर से उसका इरादा लेकर के निकलते हैं और आराम से उस जगह पहुंच जाते हैं, वहां पे अपना काम निपटाते हैं, कोई आपने एंटरटेनमेंट करनी है तो वहां पे वो करते हैं, उसके बाद वापस घर पहुंच जाते हैं। ये जो नेमत है अमन अमान की, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मुयस्सर नहीं है, घर से निकलते हुए उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि किस रास्ते से जाएंगे जहां पर के कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं उनका मुंतजर होगा, कहीं जो है वो बम का धमाका नहीं हो रहा होगा, कहीं जो है वो ऊपर से कोई जहाज गुजर करके कुछ गिरा नहीं देगा जिससे कि हम लुकमाए अजल बन सकते हैं। ये दुनिया के बहुत सारे लोगों को इस किस्म के मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारे घरों हमारे सरों के ऊपर अल्लाह ताला ने छतें दी हैं और हमें इस बात की फिक्र भी नहीं करनी पड़ती कि किस दिन जो है वो ये छत हमारे सरों के ऊपर से छीन ली जाएगी। सर के ऊपर छत का होना और उस छत के नीचे जो है वो इत्मीनान के साथ रहना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर कितने लोग हैं कि उनके सरों के ऊपर छत या तो होती नहीं है या होती है तो एक दिन अचानक से उनके सर पर से वो छत खींच ली जाती है। वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं, वो भी हमारे ही जैसे, उनके पास सोचने की सलाहियत होती है, काम करने की सलाहियत होती है, उनके पास भी वही नेमतें होती हैं जो हमारी होती हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर से वो छत हटा ली जाती है। आज किसी एक मुल्क की दास्तान आपके सामने बयान नहीं कर सकते, दुनिया के कितने मुल्क हैं जिसके अंदर के रेफ्यूजी क्राइसिस है। रेफ्यूजीज जो है वो दुनिया के हर कोने के अंदर मौजूद है, जो कि अपने घर बार को जंग की वजह से, कहत की वजह से, या किसी जलजले की वजह से, या किसी तूफान की वजह से, या किसी सुनामी की वजह से छोड़ करके किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर के उनके सर के ऊपर या छत है नहीं, अगर है तो वो उनकी अपनी नहीं है, वो किसी की एड के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, टेम्पररी है उनका मामला। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। हमें उस किस्म का ना सिर्फ ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता कि हम रात को ये सोच करके सोएं कि कल मैं उठूंगा तो मेरे सर पे छत होगी कि नहीं होगी, हमें इसकी फिक्र ही नहीं करनी होती, अगले दिन के लिए हमें प्लानिंग ही नहीं करनी पड़ती। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और ये नेमतें जो हैं इनके अंदर रह करके हमने एक इम्तिहान के ऊपर पूरा उतरना है। ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी हैं तो वो भी एक इम्तिहान है, और हमें जो अल्लाह ताला ने दी हैं तो ये इसलिए नहीं दी कि हम अल्लाह के नेक और पारसा बंदे हैं या हमने जो है वो कोई बहुत ही बड़ी कुर्बानी दे दी है और हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है जिसकी वजह से कि हम अल्लाह को पसंद आ गए और अल्लाह ताला ने जो है हमारे ऊपर छत का ऐसा परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट जो है वो सिस्टम कर दिया। तो इसी तरह से अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हैं, तो वो तमाम नेमतें जो हैं वो एक इम्तिहान के लिए होती हैं। तो उसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम का अवेलेबल होना कि आसानी से आप बीमार जब हों तो आसानी से किसी डॉक्टर के पास चले जाएं और वहां से जो है वो दवा लेकर के आ जाएं, या किसी हॉस्पिटल में चले जाएं और दवा लेकर के आ जाएं, ये फॉर ग्रांटेड हम नहीं ले सकते इसको कि ये हमारा हक बनता था, ये हमने कुछ किया था जिसकी वजह से कि हमें ये हेल्थ केयर सिस्टम दे दिया गया और वो कच्ची बस्तियों में रहने वालों को ये हेल्थ केयर सिस्टम से महरूम कर दिया गया। ऐसा नहीं है। तो जब ये बात हमारे समझ में आ गई तो हम अब रूहानी दुनिया की तरफ आते हैं। तो रूहानी दुनिया में भी एक हेल्थ केयर सिस्टम है। ये आप बार बार सुनते रहते हैं कि इंसान जो है वो रूहानी तौर पर बीमार पड़ जाता है और उस बीमारी के लिए जो है वो दवाएं होती हैं, उसके लिए एक पूरा तरीका है, इलाज है, पूरा एक स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सिस्टम है। ये हेल्थ केयर सिस्टम, स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सिस्टम, ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। ये अगर करोड़ों में एक के पास नहीं कहेंगे तो लाखों में कम से कम एक तो जरूर कहेंगे कि लाखों इंसानों के अंदर से आप एक अनोखे हैं जिनके पास के एक्सेसिबिलिटी टू अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है, एक रूहानी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। ये जो रिजालुल्लाह होते हैं, मशाइख कराम होते हैं, ये दुनिया के अंदर हमेशा से कम रहे हैं और आज के दौर में तो इनकी तादाद और भी ज्यादा कम से कम तर होती जा रही है। ये जो उलमा की तादाद कम होती जा रही है तो ये कुर्बे कयामत की निशानी है। तो पहले अगर ज्यादा थे भी तो आज तो और कम होते जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी आलम का एक्सेस है या अगर हमारे पास किसी शेख का एक्सेस है तो ये हमारी कोई नेकी नहीं है जिसकी वजह से कि हमारे पास ये एक्सेस है। हम इस तरह नहीं सोच सकते, बल्कि अल्लाह ताला ने ये एक्सेस जो हमें दिया है ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान है, ये भी हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो हमें अल्लाह ताला ने जिस तरह से कि दुनियावी तौर पर नेमतों के अंदर पाला है, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें रूहानी तौर पर भी नेमतों में पाला है कि हमें रूहानी तौर पर जो है वो उलमा का एक्सेस मौजूद है, अवेलेबल है, दीनी उलूम का एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है, मशायख उजाम का एक्सेस हमारे पास अवेलेबल है। तो नेमतों में किसको पाला जाता है? जब पालने का लफ्ज आता है तो हमारे जहन में एक मिसाल आती है और वो मिसाल आती है कुर्बानी के जानवर की। जो ईद उल अजहा के ऊपर कुर्बानी पेश करनी होती है तो उसका सही तरीका ये है कि आप कुर्बानी के जानवर को बचपन में उसके खरीद के लेकर के आएं और अपने घर में उसको अच्छी तरीके से पालें, उसको अच्छी तरीके से पालें, पाल पोस करके उसको बड़ा करें और फिर जब ईद उल अजहा का दिन आएगा तो उसको अल्लाह के रास्ते के ऊपर कुर्बान कर दें। तो जब अल्लाह ताला हमें भी पाल रहे हैं तो हमें पाल इसलिए नहीं रहे कि हम जो है वो अपनी मनमानी करते फिरेंगे और हम जो है वो इन नेमतों के अंदर ही लग करके अपने नेमत देने वाले को भूल जाएंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक इन नेमतों का इस्तेमाल करेंगे कि जी जब दिल में आया तो किसी आलम के पास चले गए, जब मिजाज अच्छा नहीं था तो आलम के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं करी, जब दिल में आया तो जी जिक्र अस्कार कर लिया और जब मूड नहीं बना तो जिक्र अस्कार नहीं किया, राबता करने का मूड बन रहा है तो राबता कर लिया, मूड नहीं बन रहा तो नहीं बना, नहीं किया। ये ऐसे नहीं है, इसको नेमतों की नाकदरी कहते हैं। तो ये हमें पाला जा रहा है और पाला जाता है कुर्बानी देने के लिए। तो ये हमारा काम है कि हम जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपनी दूसरी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको कुर्बान करके इन नेमतों का कुछ हक अदा करें, कुछ इनका जवाब दें कि ए अल्लाह हम तेरी इस नेमत को वाकई नेमत समझते हैं और हम इसकी कदरदानी करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी ख्वाहिशात को दीन के रास्ते के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो जब इतनी सारी नेमतें किसी के पास मौजूद हों तो फिर उसको ये चाहिए कि वो इनको इस्तेमाल करे और इनसे फायदा उठाए। तो ये जो रूहानी हेल्थ केयर सिस्टम है, इस रूहानी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी हमने इन रूहानी अदविया को इस्तेमाल करना है और एक तरीके के वो फॉलो करके फिर अपने आप को सेहतमंद करना है रूहानी तौर के ऊपर। ये हमारा एक डायलेमा है कि कि हम अदविया भी इस्तेमाल नहीं करते और उसके साथ साथ फिर हम अपने आप को नेक भी समझना शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप को जो है जो रूहानी बीमारियां हैं उनसे पाक भी समझना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई हम कंप्लेन नहीं करते, राबता किया, कुछ खत लिखा, जुबानी बात करी, तो कह रहे हैं जी कि हम कंप्लेन नहीं करते, हम कंप्लेन नहीं करते। लेकिन जो 5 मिनट 10 मिनट जो है आपने बात करी उसमें आपने बेशक 50 दफा ये कह दिया हो कि जी हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन आपकी बात जो है वो तो सामने बैठे हुए डॉक्टर को साफ बता रही है कि एवरीथिंग यू आर सेइंग इज कंप्लेनिंग। आप चाहे कितना खुद जुबान से बोले कि जी मैं कंप्लेन नहीं करता, मैं कंप्लेन नहीं करता, लेकिन साथ साथ जो है जो आप दूसरे अल्फाज बयान कर रहे हैं वो तो है कंप्लेनिंग। तो खाली कह देने से क्या होता है कि जी मैं कंप्लेन नहीं करता। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि जी हमारे अंदर दूसरे अमराज नहीं है। लोग कहते हैं कि जी बड़े मजे से कि जी मैं तो तकब्बुर नहीं करता, तकब्बुर तो मेरे अंदर नहीं है, बाकी प्रॉब्लम्स को मान लिया, तकब्बुर मेरे अंदर नहीं है। लेकिन आपको तो ये जुमला ही बता रहा है कि आपके अंदर तकब्बुर ही से तो बात शुरू हो रही है। तो वाइटल साइंस जो है वो तो बता देते हैं कि आप जो है वो दवा के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे, नुस्खे के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे, दवा को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, हालात जो आप बता भी रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तजुर्बेकार डॉक्टर होता है उसको तो पता लग जाता है। नजले खांसी का मरीज जो है वो आकर कहे कि जी मुझे नजला तो अब खत्म हो गया है और मुझे खांसी खत्म हो गई है, लेकिन डॉक्टर तो आप तो मरीज की आवाज ही सुन के बता देते हैं ना कि तुम्हारे तो सीने के अंदर से इस वक्त एक सीटी की आवाज आ रही है, तुम चाहे कितना ही कहते रहो कि मेरे मेरी खांसी जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि आपकी खांसी अभी है, आपके सीने के अंदर तो प्रॉब्लम अभी तक है, इन्फेक्शन तो अभी तक है, आपने एंटीबायोटिक तो सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं करी। ऊपर से अगर खांसी थोड़ी सी खत्म हो भी गई तो उससे इन्फेक्शन तो खत्म नहीं हुआ। दरअसल बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जमा हुई हुई हैं और उसकी वजह जो है ना वो एक और भी है कि माहौल तो खैर बहुत खराब है ही, आज का माहौल दुनिया नफ्स परस्ती और दुनिया के अंदर जो हाल आज है वो आज से कुछ साल पहले नहीं था, 50-100 साल पहले इतना बुरा हाल नहीं था। लेकिन एक और वजह हमारी इन बीमारियों की ये भी है कि हम जो है ना वो असल में हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ज्यादा गलत हुई है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ, बेसिक फॉल्ट्स के साथ हम जवान हुए हैं। साजिश के जहन में एक चुतरा आता है कि हम अगर अपने आप को अक्सर अक्सरियत को तो ज्यादातर को नहीं, तो बहुत से लोग यहां तो बैठे हैं जो माशाल्लाह इस माहौल से नहीं आए, लेकिन इन जनरल जो है वो अगर हम अपनी जनरेशन पे नजर डालें तो शायद हम अपने आप को अलिफ से अनार की जनरेशन कह सकते हैं। अलिफ से अनार की जनरेशन क्या मतलब? अलिफ से अनार की जनरेशन का कि हमने जिन किताबों से अपनी जिंदगी का आगाज किया था उन किताबों के अंदर अलिफ से अनार होता था, उन किताबों में अलिफ से अल्लाह नहीं होता था, हालांकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर होती थी या मुसलमान मुआशरे में ही वो किताबें लिखी जाती गई होती थी, उनको लिखने वाले भी मुसलमान होते थे और जो उनको पढ़ने वाले होते थे वो भी मुसलमान होते थे, लेकिन अलिफ से उस किताब के अंदर अल्लाह नहीं होता था, उस किताब के अंदर अलिफ से अनार होता था। तो इब्तिदा हमारी उससे होती है, अलिफ से अनार से हमारी इब्तिदा हुई थी और फिर आगे जाकर के हमने फिर जो उर्दू दान थे वो फिर इमरान सीरीज की नॉवेलें पढ़ते थे या वो इंस्पेक्टर जमशेद इश्तियाक अहमद साहब, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत नए काम के लिए पसंद फरमा लिया है, लेकिन उनकी नॉवेलें पढ़ते थे। जो अंग्रेज दान होते थे वो फेमस फाइव, एनेट ब्लिटन की जो हजारों नॉवेल्स मौजूद हैं वो पढ़ते थे। थोड़े से बड़े हो गए तो खवातीन जो है वो खवातीन डाइजेस्ट पढ़ के जवान होती थी और जो मर्द जो है वो दूसरे किस्म के किस्से कहानियां पढ़ के जवान होते थे। फिर थोड़ा सा टीवी का माहौल आ गया, फिल्मों का माहौल आ गया, वीसीआर आम हो गया, तो घर घर के अंदर जो है वो ड्रामे देख देख करके फिर शऊर कहाँ से ले रहे हैं, ड्रामों को देख के ले रहे हैं, इस टेलीविजन के ड्रामे से मुआशरे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो है वो फिल्मों का एक दौर दौरा शुरू हो गया, तो हर मुल्क की फिल्में जो जुबान समझ में आती है उस जुबान की फिल्में देख रहे हैं, तो अंग्रेजी के जो एक से एक एक्टर्स जो हैं वो हमारे ऐसे हीरोज होते थे जैसे कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, और जो इंडियन फिल्मों के एक्टर्स एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो हमारे जहनों के ऊपर इस तरह से छाए हुए होते हैं। तो हम जो है ना वो इस तरह से जवान हुए हैं, तो इस वजह से हमारे जो है ना बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारी। ये जो किताबें पढ़ते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं या बड़े पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि बस आपकी निगाहों की स्क्रीन के ऊपर से वो चीज गई और फिर बस खत्म हो गई। निगाह जो होती है इंसान की, वो इंसान के दिल के अंदर जाने का एक रास्ता होता है। जो बाहर के इमेजेस होते हैं, जो बाहर के आइडियाज होते हैं, वो निगाह से होते हुए, इंसान के जहन से होते हुए इंसान के दिल में उतरते हैं। तो इंसान का दिल जो होता है वो उन चीजों को पढ़ करके, उन अल्फाज को पढ़ करके उस दिल के अंदर कैफियत बन रही होती है। उसके अंदर मोहब्बत किस चीज से होनी चाहिए, वो मैसेज उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा होता है। किस चीज से नफरत होनी चाहिए, किस चीज से करात होनी चाहिए, ये उन अल्फाज में से होते हुए उसके दिल के अंदर उतर रहा होता है। तो हमारे दिल के अंदर कई सालों का जखीरा मौजूद है, डाइजेस्टों का, नॉवेलों का, फिल्मों का, ड्रामों का। तो इस जखीरे को खत्म करना जो है वो उसके लिए चंद मिनटों का मुराकबा या अपनी मिजाज में आने वाला राबता, या जो है वो कभी दिल चाहा तो आलिम से रुजू कर लिया, कभी नहीं रुजू किया। ये जो हमारे हमने 15 20 साल, 25 30 साल जो है जिस तरह से हमने गुजारे हैं, जिस तरह हम पल बढ़ के जवान हुए हैं, तो ये चीजें जो है वो इतने आसानी से नहीं निकलेंगी। इसके लिए जो है वो हमें लग करके अपने ऊपर काम करना होगा, लग करके इन बीमारियों का हमने इलाज करना है। तो पिछले दिनों इस आजिज ने आपको तसव्वुफ का जो है वो एक पहलू समझाया था कि तसव्वुफ जो है वो कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का नाम नहीं है। तसव्वुफ जो है वो कोई स्टूडेंट काउंसलर और आम स्टूडेंट, ये काउंसलिंग वाला सिस्टम नहीं है, और ना जो है ये कोई एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर के पास गया, एम्प्लॉयर ने उसको एक काम लगाया और एम्प्लॉई ने उसको काम को कर दिया तो उसको तरक्की मिल गई, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो ये भी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि तसव्वुफ जो है वो इस आजिज ने आपको समझाया था कि ये प्योरली डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप है। ये इंसान अपने अमराज के ऊपर जब आगाही हासिल करता है तो उसके इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास चल के जाता है, और उस डॉक्टर के पास अपने अमराज को खोल करके बयान करता है, दवाई लेकर के आता है, दवाई पे अमल करता है, फिर दवाई को इस्तेमाल करता है, फिर वापस जाता है। ये है तसव्वुफ। लेकिन आज जो है वो इससे आगे एक और बात करनी थी कि ये बात तो उस दिन आपको समझाई क्योंकि बहुत बेसिक से लेकर के चलना था कि गलत फहमियां हैं कि भाई उस्ताद शागिर्द जैसा रिलेशनशिप है तो टीचर जो शेख हैं उनको जो है अपना उस्ताद समझते हैं, कि जिस तरह उस्ताद ने कोई चीज बता दी तो चलो उसके ऊपर अमल कर लिया, नहीं अमल किया जो भी किया, लेकिन एक बैक एंड फोर्थ एक रिलेशनशिप वैसा नहीं होता। एक बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल रिलेशनशिप उस्ताद के साथ नहीं होता, एम्प्लॉयर के साथ भी ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो इस वजह से ये समझाया था कि ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इसको डॉक्टर पेशेंट ही के तौर पर लेना चाहिए। लेकिन इससे आगे एक बात यह है कि यह सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी नहीं है कि अमराज के अंदर घिरा हुआ शख्स जो है वो आया और उसने अपना इलाज करवाया। ठीक है, ये जो है ना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ये समझ लें कि तसव्वुफ का फेज वन है। तसव्वुफ का फेज वन है। फेज वन के अंदर हमने जो अपनी सारी जिंदगी, गंदगी का, गुनाहों का बैगेज अपने दिलों के अंदर जमा किया हुआ होता है, उस बैगेज को हमने धोना होता है, उस गंदगी को, उस फिल्थ को, उन रूहानी बीमारियों को धोना होता है, खुरचना होता है अपने दिल के अंदर से, और दिल की जमीन को जो है वो क्लियर अप करना होता है, क्लीन अप करना होता है। तो ये बेशक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के जरिए ही से मुमकिन हो सकता है, इसके अलावा ये मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस सारी जिंदगी जो है वो हम एक जख्म खोर्दा और बीमार ज़दा जो है वो इंसान ही के तौर पर गुजार दें, कि जी मैं तो बहुत बीमार हूं और मुझे तो अभी इसका भी इलाज करना है और उसका भी इलाज करना है, उसका भी इलाज करना है, और बस बीमारी ही की हालत में हम सारी जिंदगी गुजार दें, तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि गोया कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बीमारी ही के लिए भेजा था, बीमार ही रहने के लिए भेजा था, और तो कोई मकसद ही नहीं था हमारा यहाँ पे आने का। लेकिन मकसद तो अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमा दिया कुरान पाक के अंदर के वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसों को जो है वो किसी और चीज के लिए पैदा ही नहीं किया सवाए अपनी इबादत के लिए। तो भाई इबादत का फेज कब आएगा, इबादत के लेवल के ऊपर हम कब पहुंचेंगे कि हमारी जो है वो नमाज वाकई इबादत बन जाए, हमारी नेकी के काम जो है वो वाकई इबादत बन जाए, और हम जो है हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत बन जाए, एक एक लम्हा जो है अल्लाह ताला की बंदगी के अंदर गुजरना शुरू हो जाए, वो टाइम कब आएगा? अगर हमने सारी जिंदगी अपने अंदर गुनाहों को भरा, अब जो है वो बाकी जिंदगी हम गुनाहों को खुरचने के अंदर गुजार देंगे, तो फिर अल्लाह की वो बंदगी वाली जिंदगी कब गुजारेंगे? ये और बेबात बिल्कुल ठीक है कि आप जो है वो ऐसा नहीं है कि अपने गुनाहों को दूर कर रहे हैं तो उस दौरान आप गोया की इबादत नहीं कर रहे, वो भी आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो एक अमाउंट कम है। इसलिए कि देखें बीमार शख्स जो है ना वो मुआशरे के अंदर किरदार अदा नहीं कर सकता। किसी भी आप टीबी के मरीज को ये कहें कि भाई तुम मुआशरे में जाकर के कुछ काम करो, तुम जो है वो लोगों की मदद करो जो बीमार हैं उनको हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करो, तुम जो है वो जो जाहिल हैं मुआशरे के अंदर इल्म नहीं है उनको जाकर के पढ़ाओ, तुम जो है वो लोगों की मदद करो, तुम जो है वो सियासत के अंदर कोई अमल करो, तुम जो है वो मुल्क के लिए जो है वो कुछ तरक्की का काम करो, वो टीबी का मरीज है वो क्या करेगा? वो नहीं कर सकता ये सारे काम, उसको तो अपनी टीबी को पहले ठीक करना है। तो एक बीमार शख्स जो है वो मुआशरे के अंदर किरदार अदा नहीं कर सकता। तो क्या किसी मुल्क के लोग जो है वो सारे के सारे अगर बीमार होंगे तो वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता है? वो मुल्क जो है वो कभी कुछ इज्जत इस दुनिया के अंदर कमा सकता है? नहीं कमा सकता। तो उस मुल्क को पहले पहले अपनी बीमारों को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो तसव्वुफ का फेज वन है ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बीमार आए हैं, हम अलिफ से अनार वाली जनरेशन जनरेशन बन करके यहां पर आए, इस वजह से हमें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को ठीक करने के लिए, इसलिए कि इसके बगैर हम मुआशरे के अंदर किरदार अदा ही नहीं कर सकते, हम अल्लाह ताला की दीन की वो खिदमत कर ही नहीं सकते जो कि एक सेहतमंद रूहानी तौर पर सेहतमंद इंसान कर सकता है। तो इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने इन इन बीमारियों का इलाज करें, लेकिन अब हमने सारी जिंदगी इसमें नहीं गुजार देनी। और ये बात याजिद इसलिए कह रहा है कि आपके सामने एक गोल हो कि भाई मैंने अपनी सारी मैं इसलिए नहीं इस दुनिया के अंदर आया था कि मैं जो हूं अपनी शहवत की बीमारी ही को खत्म करने में सारी जिंदगी गुजार दूं। पहला तसव्वुफ के अंदर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर पहला सबक क्या है? लतीफ़े कल्ब का सबक है। लतीफ़े कल्ब के असरात क्या होते हैं? शहवत की बीमारी को खत्म करना। दूसरे जो लतीफा है लतीफा रूह, उसके ऊपर जो जब इंसान जिक्र करता है तो उसके असरात क्या होते हैं? गुस्से की बीमारी को खत्म करना। अब एक शख्स जो है वो सारी जिंदगी लतीफा कल्ब के ऊपर ही गुजार दे, जी मेरी तो शहवत ही खत्म नहीं हो रही, मेरी तो शहवत ही खत्म नहीं हो रही। अब शेख भी तो देख रहे हैं ना कि इस बंदे की तो शहवत ही खत्म नहीं हो रही, इसको मैं दूसरा सबक कैसे दूं? एक बंदा जो है वो गुस्से के मर्ज में जो मुब्तला है तो वो तो है ही, उसको तो गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा, गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। तो गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा तो लतीफा रूह के ऊपर तो उसने जिक्र ही नहीं किया, उसका गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा तो वो अगले लतीफे के ऊपर कैसे आएगा, तरक्की कैसे मिलेगी? और वो सारी जिंदगी जो है गुस्से के इलाज में ही गुजार दे तो वो क्या दीन का काम करेगा? वो तो कोई दीन का काम भी करेगा तो लोगों के ऊपर गुस्सा ही उतारेगा ना उसके अंदर। काम करने के साथ साथ दीन का काम करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। हम समझते हैं कि वो क्वालिफिकेशन जो है ना मदरसे के अंदर 8 साल आलम कोर्स हमने कर लिया, हम क्वालिफाई हो गए दीन का काम करने के लिए। वो क्वालिफिकेशन एक जाहिरी क्वालिफिकेशन है। दीन के काम सही तरीके से करने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि इंसान की रूहानी बीमारियों का कम से कम इतना इलाज हो जाए कि वो दीन के काम के दौरान अपनी रूहानी बीमारियों से उस काम को खराब ना करे। कम से कम इतना क्वालिफिकेशन तो हो ना, कम से कम एक पहला स्टेप तो वो लेना जो कि तसव्वुफ की पहली सीढ़ी कहलाती है कि उसको अपने दीदे कसूर तो नसीब हो जाए, अपने जो है वो ऐब तो उसको नजर आने शुरू हो जाए। ये पहला स्टेप है तसव्वुफ का। अब इंसान जो है वो सारी जिंदगी जो है वो यही करता रहा है कि जी मैं तो आलिम बन गया, मैं तो आलिमा बन गई, मैंने तो मुफ्ती का कोर्स कर लिया, मैंने तो ये वाला कोर्स कर लिया। और जो है वो जब कभी कोई प्रॉब्लम आए वो ब्लेम जो है सारा का सारा दूसरों पे डाल, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतार रहा है, दूसरों के ऊपर जो है नाराज हो रहा है। तो ये तो पहला स्टेप ही अभी तक आप नहीं पहुंचे। आप समझ रहे हैं कि जी 8 साल का आलिम कोर्स करने से जो है वो आप क्वालिफिकेशन मिल गई है, अब आप दीन का काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी तक तो आप पहले स्टेप पर ही नहीं पहुंचे, दीदे कसूर तक आपको नसीब नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सारी जिंदगी हमने इन मसलों के अंदर घेर के नहीं गुजारनी, हमने इस फेज से गुजर करके अगले फेज पे जाना है, हमने इन बीमारियों का इलाज जरा लग के कर लेना है ताकि हम सही मानों में दीन का काम कर सकें। तो सारी जिंदगी मरीज बना करके रखना ताकि शेख साहब की जो है दुकान चलती रहे, मरीज आते रहें और जो है वो उनसे दवा की पुड़िया लेके जाते रहें, ये मकसद नहीं है। ये वाले अगर शेख हैं तो फिर आप कहीं और जाना चाहिए। ये तो वहां पे होता है ना कि जी वो आते हैं, जी हमें कोई पुड़िया दे दें, फूंक करके दे दें, हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, फूंक करके हमें पुड़िया दे दें। वो शेख साहब जो है वो पुड़िया बनाते हैं, फूंकते हैं, और माशाल्लाह उसकी फीस भी होती है। तो वो अगर काम करना था तो फिर उसके लिए कहीं और जाना चाहिए। तो भाई हमारे मशायख का तो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है, हमारे हजरत का ये मकसद नहीं है दीन का काम। वो जो उन्होंने अपना घर बार को छोड़ा हुआ है और अपनी जिंदगी जो है वो एक कुर्बानी की, 100% उनका एक एक लम्हा जो है वो कुर्बानी का, एक एक चीज हजरत की जिंदगी के अंदर नजर आता है कि उन्होंने अपनी जाती जो प्रायोरिटीज हैं उनको किस तरीके से कुर्बान किया। वो इसलिए से नहीं कुर्बान किया कि बस जो है वो पुड़िया देते रहे लोगों को। तो फेज 1 तो ये है, लेकिन फेज 2 जब शुरू होता है ना, ये जो आप कर रहे हैं अभी, अक्सर लोग लतीफा कल्ब के ऊपर हैं, लतीफा रूह पर हैं, सिर हैं, खफी पर हैं, अखफा के ऊपर हैं, तो ये जो 7 असबाक होते हैं ये लताइफ के ऊपर जिक्र के असबाक कहलाते हैं। 7 असबाक लताइफ के ऊपर जिक्र के असबाक कहलाते हैं। इन असबाक के हर सबक का एक असर होता है, जैसे शहवत हो जाती है, फिर गुस्सा जाता है, फिर हिर्स जाती है, फिर ये लेकिन ऐसे नहीं चला जाता कि बस आपको जो है वो सबक दे दिया और आपको चला जाएगा। उस सबक के ऊपर जब सही तरीके से जिक्र करेंगे तब वो जाएगा, राबता करेंगे तब वो जाएगा। खाली जिक्र करने के भी नहीं होता कि भाई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि दवा थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर डॉक्टर की सोहबत में भी रहेंगे ना, या डॉक्टर की नजरों में रहेंगे तो भी बीमारी खत्म हो जाती है। एक बेहतर माहौल में चले जाएं या डॉक्टर की नजरों में रहें या राबता करें तो वो मामला चलता रहता है। हमारे हजरत के कितने ऐसे लोग हैं जिनको के टोटल वो खिदमत का काम करते हैं, जिक्र अस्कार नहीं करते। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ राजद ने बहुत टाइम गुजारा, वो बड़े मशहूर हजरत के करीबी लोगों के अंदर से। अच्छा, उनकी शादी हुई। अब शादी करके जब वो हजरत की एक मुरीदा ही को घर में लेकर के आए तो वो मुरीदा जो है माशाल्लाह वो तो 4-4 घंटे जिक्र करती थी, तो वो आकर के शादी के बाद भी 4 घंटे जिक्र करें रोजाना। और ये जो है जिनको अब माशाल्लाह हजरत ने इजाजत खिलाफत दी है, तो ये डॉक्टर साहब जो है ये तो जिक्र ही नहीं कर रहे, तो ये तो हर वक्त जो है वो हजरत का कोई काम कर रहे हैं, हजरत जब हैं तो उन हजरत के साथ लगे हुए हैं, जब हजरत नहीं है तो फिर दूसरा कोई काम कर रहे हैं और अपनी क्लिनिक चला रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई आप तो जिक्र ही नहीं करते, तो ये क्या हुआ। तो हजरत से बात बात करी तो हजरत ने कहा कि भाई आप जो है जो दूसरा काम कर रहे हैं आपको वो तवज्जुहात मिल रही है, आपको वो चीज मेडिसिन मिल रही है जिससे कि आपका काम चलता रहेगा। तो ये भी तरीका होता है, लेकिन जिसके पास ये अवेलेबल नहीं होता उसको जिक्र भी करना पड़ता है। तो फेज 2 में जाकर के जब आप ये लताइफ के ऊपर से गुजर, लताइफ जो है ना वो इन बीमारियों का इलाज करने के लिए बनाए गए, लताइफ के ऊपर जिक्र, फिर उसके बाद तहलील का जिक्र का सबक आता है, बल्कि उससे पहले जो है वो हफ्स दम का सबक आता है, जिसके अंदर के आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की अपने दिल के ऊपर जर्ब लगानी होती है। उस सबक के बाद फिर तहलील लिसानी का सबक आता है, जिसके अंदर के ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ना होता है और बहुत ज्यादा कसरत के साथ पढ़ना होता है। फिर जो है वो 10वां सबक जो है मुराकबा अहदियत का आता है, और फिर उसके बाद जा करके जो है ना असल मुराकबा फिक्र के असबाक शुरू होता है, जो हम मुराकबा मुराकबा कहते हैं, मुराकबा इन जनरल तो पूरा इनकम्पस है सारे 35 असबाक के ऊपर, लेकिन जो अगर आप टेक्निकली इसके डिटेल्स के अंदर जाएं तो मुराकबा आपका 10वें सबक तक स्टार्ट ही नहीं होता। अभी तो आप जिक्र के असबाक कर रहे हैं जो कि लताइफ के ऊपर जिक्र करना है, ताकि आप जो है वो उस चीज को खुरच के अपने दिल की जमीन को साफ करें, फिर जो फिक्र के असबाक होंगे तो उन फिक्र के असबाक के जो आपके ऊपर असरात होंगे तो फिर जो है आप तरक्की करेंगे रूहानी दुनिया के अंदर। तरक्की तो फिर होती है, फिर कहीं जाकर के आपको जो है वो अल्लाह ताला की हुजूरी नसीब होती है। जो हम कहते हैं कि जी मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझे नमाज के अंदर हुजूरी नहीं मिलती, मुझे वसवसे आते हैं मुझे, तो भाई ये जो हुजूरी है ये कोई इतनी मामूली चीज नहीं है कि आप आएंगे आप एक दफा बयान सुनेंगे और आपको हुजूरी नसीब हो जाएगी। उसके लिए बड़ा लंबा आपको मेहनत करनी पड़ती है, मुजाहिदा करना पड़ता है, फिर जाकर के हुजूरी जो है वो 11वें सबक के ऊपर जब इंसान, बल्कि 10वें सबक के ऊपर जब इंसान सही तरह से मुराकबा करता है फिर उसको हुजूरी नसीब होती है। फिर जो अल्लाह ताला के अलावा जो गैर है, जो मासिवा है, उससे इंसान को गफलत होती है, यानी हम जो अल्लाह ताला से गाफिल है ना, फिर उस वक्त इंसान के ऊपर ये वक्त आता है जब वो आगे के सबक करता है मुराकबे के फिक्र के असबाक करता है कि उसको जो है वो अल्लाह के मासिवा से गफलत होती है, यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ है दुनिया के अंदर उससे उसको गफलत होती है और अल्लाह ताला के साथ उसको हुजूरी वाली कैफियत नसीब होती है। फिर जाकर के जो है ना वो आगे जाकर के 16वें सबक के ऊपर इंसान को मईयत नसीब होती है, अल्लाह ताला की मईयत के अंदर वो हर वक्त अपने आप को महसूस करता है, हर वक्त वो सबक कहलाता ही मईयत का सबक है। तो ये चीजें तो आगे हैं, अभी तो हम लोग जो है वो प्राइमरी, हमें हमारा ग्रेड वन अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम केजी के स्टूडेंट हैं, KG 1, KG 2, KG 3 से लेकर के आप KG 9 तक चले जाएं, या मॉन्टेसरी कह लें उसको या कुछ भी कह लें, तो हमने सारी जिंदगी इस पर नहीं गुजारी, हमने इसके ऊपर सही तरीके से इस हेल्थ केयर सिस्टम की जो नेमत हमें मयसर है इसको हमने इस्तेमाल करना है ताकि हम इस फेज से आगे बढ़ें। हमें इसलिए नहीं बनाया गया, हमें अल्लाह ताला की बंदगी के लिए बनाया गया है, और बंदगी जो है वो हम इस तरह जख्म खोर्दा हालत के अंदर कर नहीं सकते, इस तरह बीमारी की हालत में हम बंदगी जो है ना अल्लाह ताला की कर नहीं पाते, दीन का काम हम कर नहीं सकते। तो हमने जो है वो फेज वन को तो बहुत तेजी से हमने फिक्र करनी है कि हमारा ये फेज वन तेजी से खत्म हो ताकि हम दीन का सही मानों में काम कर सकें। जैसा कि हमारे उस्ताद शेख हुसैन सत्तार साहब, बल्कि हजरत जी भी फरमाते हैं कि जो दीन का काम करने वाले लोग होते हैं वो तो जरनैल की मानिंद होते हैं, जरनैल की माने। देखें फौज के अंदर, फिर वो समझाते हैं इस बात को कि फौज के अंदर एक आम सिपाही जो है ना वो अगर बीमार पड़ जाए तो उसकी इलाज मुआवजे का इतनी फिक्र नहीं होती, उसका बंदोबस्त होता है, पूरा फौज का जो है वो एक हॉस्पिटल का सिस्टम होता है, पूरा उनका मेडिकल सिस्टम होता है, तो सिपाही को भी वो चीज अवेलेबल होती है, लेकिन उसके बीमारी की वजह से जो है लोगों को फिक्र नहीं होती कि अब क्या क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर जर्नैल बीमार पड़ जाए, जर्नैल को कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी बीमारी जो है वो हर एक के लिए फिक्र का सबब बन जाती है और उसकी सेहतयाबी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। तो जब सही मानों में दीन का काम करने वाले बन जाते हैं तो फिर जो है हजरत फरमाते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो है वो जर्नैल की मानिंद हो जाती है। अब अगर उसको रूहानी तौर पर कोई बीमारी लाहिक हो भी जाती है ना तो अल्लाह ताला जो है वो उस बीमारी का इलाज जल्दी फरमा देते हैं, उसके इलाज का जल्दी बंदोबस्त फरमा देते हैं, कोई ऐसा मौका मुहैया उसको कर देते हैं, कोई ऐसा बहाना उसके लिए बना देते हैं, कोई ऐसी तरफ से उसको, जिसको हम दूसरे अपनी कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कि जी उसको चपत पड़ती है, फिर इधर से कोई गुनाह किया फौरन चपत पड़ती है, फौरन ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है, इधर से कुछ गुनाह किया फौरन जो है वो अपने की नकीर का मामला होता है कि भाई तुम जरनैल हो, तुम ये चीजें नहीं कर सकते जो कि एक आम सिपाही करता फिरता है। तो अल्लाह ताला जो है ना फिर उसको सीधा रखने के लिए जो है ना असबाब मुहैया कर देते हैं। वैसे तो इस तरह का काम करने वाले फिर भी जो है वो बड़ों की निगरानी में रहते हैं, हमारे हजरत बार बार अपनी औलाद को भी, रूहानी औलाद को भी और जो नेचुरल औलाद है उसको भी बार बार ये नसीहतें करते हैं कि तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने ही तुम्हारे मुरीद ना बन जाए, शागिर्द ना बन जाए, लेकिन हमेशा बड़ों की निगरानी में रहना, हमेशा बड़ों के साय में रहना, इसलिए कि तुम गलती करोगे तो बड़े तुम्हें जो है वो मुतनब्बे कर सकें कि तुम कि ये इस बात सही नहीं है। बड़ों की बात इंसान मानता है, छोटे आके मुतनब्बे करेंगे तो उनकी बात को इग्नोर कर देंगे। उलमा के साए में रहना, उलमा की नजरों में रहना कि कभी जो है वो गलती हो जाती है तो उलमा का ये फर्ज होता है कि वो उस गलती की इसलाह कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो अल्लाह ताला खुद भी इस्लाह की फिक्र फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो है खुद भी इस्लाह के असबाब जो है वो ऐसे लोगों के लिए मुहैया कर देते हैं। तो लुब्बे लुबाब इस पूरी की पूरी बात का ये था कि हमें अल्लाह ताला ने करोड़ों में एक नहीं तो कम से कम लाखों में एक जरूर बनाया है कि हम आज के दौर के अंदर जब मुकम्मल तौर पर दुनिया के अंदर मटीरियलिज्म का गलबा हो चुका है, दज्जाली निजाम हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है, जो उसकी निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इस माहौल के अंदर, इस जमाने के अंदर अगर हमें रूहानी हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस अवेलेबल है तो हम लाखों में एक हैं। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है और उस नेमत की हमने कदरदानी करनी है, उसको हमने सीरियसली लेकर के चलना है, उसके ऊपर अमल करना है ताकि हम जो है वो अपनी इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकें। जो हम बैगेज जो है वो अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर, अपने जवानी के जवान होने के वक्त के अंदर जो हमने अपने अंदर बैगेज को इकट्ठा किया है, ड्रामों, टीवी, फिल्मों, डाइजेस्टों, कहानियों, कार्टूनों, इन सब के रास्ते से, तो उस बैगेज को हमने धोना है ताकि हम अपने असल मकसद हयात तक आ सकें। हमने अपने खाली जुबान से ही अपने गुण नहीं गाने कि जी मैं तो तकबर नहीं करता और मैं जो है कंप्लेन नहीं करती और मैं जो है वो मेरे अंदर तो गुस्से का मर्ज नहीं है, ये हमने अपनी जुबान से अपनी तारीफें नहीं करनी, बल्कि हमने अपने हालात बताने हैं और हमने डॉक्टर को जो है वो सुनना भी है। कुछ लोगों को ये भी होती है ना आदत के बस बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते, तो अब आए हैं भाई अपने हालात बताने के लिए, तो अब जब तक आप चुप नहीं होंगे तो आगे बंदा जवाब क्या देगा आपको। तो इस वजह से हमने एक ये भी एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करनी है, ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी एक एबिलिटी होती है कि किसी की बात को गौर से सुनना, ये हर एक को नसीब नहीं होती। बहुत से लोग बहुत कुछ अपने दिल में लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद शुरू होते हैं तो चुप ही नहीं होते, जब चुप होते हैं तो उस वक्त टाइम खत्म हो चुका होता है। तो ये भी एक एबिलिटी हमने अपने अंदर क्रिएट करनी है कि हमने, अब आप डॉक्टर के पास जाएं और सारा वक्त आप ही बोलते रहें तो डॉक्टर आपको क्या बताएगा। तो हम इस प्रोसेस से गुजर करके अपने आप को फेज टू के लिए तैयार करें, ये हमारी मंजिल है। हमने हुजूरी नमाज में इसी दुनिया में हासिल करनी है, नमाज की हुजूरी हमने जन्नत में हासिल नहीं करनी, जन्नत में तो नमाज ही नहीं होगी। वो है ना एक बुजुर्ग के सामने किसी ने तस्करा कर दिया कि जी हजरत जन्नत में नमाज नहीं होगी, तो उनको उनके आंसू आ गए। हजरत अक्सर बयान करते हैं कि उनको नमाज में जो लुत्फ मिलता था, जो मजा आता था, तो उन्होंने कहा कि जी अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो जन्नत में फिर मजा ही क्या आएगा। तो हमने नमाज की हुजूरी जन्नत में नहीं हासिल करनी, हमने इस दुनिया में नमाज की हुजूरी हासिल करनी है, हमने इस दुनिया में इखलास के साथ अल्लाह ताला के दीन का काम करना है, हमने इस दुनिया में जो है वो लोगों की मदद करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, अल्फाज इस वक्त जहन में नहीं आ रहे लेकिन आप सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब अगर हम जो है जिक्र मुराकबे करके कुछ कैफियत हासिल कर भी चुके हैं तो हमारा कैफियत तो हमने हासिल कर ली, लेकिन ईमान कब मुकम्मल होगा कि जी हम खुद ही जो है वो कैफियत के अंदर मजे करते रहेंगे सारी जिंदगी, या हमें अपने मुसलमान भाइयों की भी फिक्र होगी कि जी वो जो है अगर बेचारे गुनाह में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से गफलत में पड़े हुए हैं, गुनाहों की नहूसत की वजह से उनकी जिंदगियां इतनी परेशान हैं, तो उनके लिए भी तो हमें फिक्र करनी है ना, उनके लिए फरिश्ते तो आके फिक्र नहीं करेंगे। ये किसने कह दिया है कि ये दीन की मेहनत की फिक्र करना ये सिर्फ तबलीगी जमात का काम है, ये सिर्फ तबलीगी जमात का काम है? किसने कहा? क्या तसव्वुफ वालों का ये काम नहीं है कि वो दुनिया में दूसरे मुसलमानों की फिक्र करें जो अल्लाह ताला से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला से गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं करें? ये कहां लिखा हुआ है? तो ये जिक्र मुराकबे का मकसूद जो है वो ईमान को मुकम्मल करना है ताकि हम जो है वो दीन की फिक्र भी कर सकें, अपनी नमाजों को भी बनाना है और दूसरों की भी रहनुमाई करनी है। मकसूद जो है वो ख्वाब देखना नहीं है, मकसूद जो है वो कैफियत हासिल करना नहीं है और रंग देखना नहीं है, ना जो है वो अपनी दुआएं कबूल करवानी, जी पहले मेरी दुआएं कबूल नहीं होती थी अब मैं मुराकबे करता हूं ताकि मेरी दुआएं कबूल हो जाए, ये मकसूद नहीं है मुराकबे करने का। ठीक है, तो मकसद खाली यही था कि हम अपनी मंजिल को पहचाने और अपनी जिंदगी जो है वो रास्ते में ही ना खत्म कर दें। आखिर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। चलिए 2 मिनट के लिए थोड़ी जिक्र कल्बी की मशक कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट कर अल्लाह ताला की याद में डूब जाएं। तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله خليل سبحان ربي العالي وبحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما. اے اللہ، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ، ہماری مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، اپنے مقرب بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما. تمام شرور اور فتن سے ہماری ہمارے اولاد کے عزیز و اقارب کی حفاظت فرما. انہیں ایک بننا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نفس شیطان کے بہکاؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے قرب کی منازل طے کرنا ہمارے لیے ممکن بنا، ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کی ایک نگاہ فرما. اے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ، کمزور بندے ہیں. اے اللہ، آگے بڑھنا بہت مشکل پاتے ہیں. اے اللہ، نفس بہکاتا ہے. اے اللہ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اے اللہ، وسوسوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ، نماز کی حضوری عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما. اے اللہ، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت لذت نصیب فرما. اے اللہ، عمر گزرتی جا رہی ہے، نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ، صحیح معنوں میں اپنا بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، شرمندگی والی زندگی سے اے اللہ ہمیں دور فرما. اے اللہ، قبولیت والی زندگی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.